वर्तमान गुरु के भी हाथ में नहीं, वो अपनी इजाजत दे सकता है खाली ताकि ईश्वर का नाम और लोगों में पहुंचे। इसका जरूरी 99.9% हमेशा इशारा ऊपर से होता है कि फलाने व्यक्ति को दे दो। कभी प्रेम बस आके किसी की तरफ मन जाता है तो ऊपर वाला रोक देता। हमने गुरुदेव को ही टाइम, लेकिन इस व्यक्ति को भी अपनी इस हालत को मेंटेन करने के लिए सत्संग जरूरी है। अगर वो सत्संग नहीं करता है तो समझिए पिछले जन्म की कमाई थी जिसको एग्जॉस्ट कर रहा है इस जन्म में, और हो सकता है इसी जन्म में खत्म हो जाए। बची हुई इजाजतें जो हैं वो खाली ताकि ईश्वर का नाम चलता रहे, एक सिलसिला चलता रहे। हमारे यहाँ इसीलिए लिखित देना शुरू किया, पहले लिखित नहीं देते थे, डिक्लेयर कर दिया किसी जलसे में या किसी उसमें। लेकिन ये था कन्फ्यूज़न हुए, आपसी भेदभाव हुए, इसलिए उन्हें लिखित देना शुरू किया। तो वो पिछले जन्म की कमाई को इस जन्म में भोग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है इसकी कमाई को मेंटेन करने के लिए उसको भी बराबर सत्संग करना पड़ेगा और आगे उन्नति के लिए कोशिश करनी। गुण उसमें सब पिछले ही जन्म के होते हैं। नॉर्मल आदमी को इस जन्म में वो पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने आता, जो भोगने ही है। जिन जिन के साथ भोगने होते हैं वैसे ही परिवार दोस्त रिश्तेदार मिलते हैं। लेकिन अगले इस जन्म के कर्मों को वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी योनि, देवताओं को भी ये पीरियड है, किसी का 50 साल, किसी का क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से मोक्ष नहीं होती। मोक्ष केवल होती है तो मनुष्य शरीर ही। और मनुष्य शरीर में तब होती है जब पिछलों को भोगता रहे, नए उसके हिसाब से करे कि हमें ये हमारे कर्म और हम ही को भोगते। नॉर्मली हर शख्स हर व्यक्ति ईश्वर को दोष देता है, अपनी किस्मत को देता है। और आगे के भी लिए कोशिश नहीं करता है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे कम से कम फ्यूचर हमारा ब्राइट हो। और यही गुरुदेव कहते थे, बेटे सब काम करते हुए किसी वक्त भी मेरी याद से खाली ना। ये लालच के लिए कहते थे कि मेरे ख्याल से करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। ये खाली एक था कि उनके ख्याल में करें। तो उससे मनुष्य की आदत पड़ जाती है, हर काम में अपने गुरु को साथ रख। हम लोग भी लेते हैं उस, लेकिन कोई काम करेंगे कि हे प्रभु हे ईश्वर, लेकिन क्योंकि ना हमने उसे देखा है ना हमें विश्वास है। विश्वास हर शख्स को तभी होता है जब वो अपनी आँख से देख लेता है। तो चाहे अपने देवता को, चाहे अपने इष्ट को, किसी न किसी का सहारा हम लेते हैं। और दुनिया के काम हो गए तो ज़रा सहारा मजबूत होता है, और नहीं होते हैं तो हमारा इतकाज जाता रहता है। इसी को हमारे यहाँ ये है कि हर एक में कार्य करने से पहले अपने गुरु को साथ, उसमें भी हम ख्याली तौर से लेते हैं, इसमें भी लेते हैं। इसमें क्योंकि हमने उनके रूप को देखा, उनको जानते हैं, लिहाजा हमें विश्वास रहता है। उसमें हमें विश्वास नहीं होता है इसलिए हमेशा दुविधा बनी रहती है। हर व्यक्ति जो उसने पिछले जन्म कर्म किए हैं उन्हीं को भोगने के लिए, जिन जिनके ज़रिए भोगना है उनसे इस जन्म में वास्ता पड़ता है। उसे खुशी खुशी भोगे, क्योंकि वो और किसी के कर्म नहीं थे, आप ही कर्म थे। आगे आप राइडर लगा सकते हैं, और इसी को विवेक कहते हैं कि अपने विवेक से करते रहिए। इसी को बाबूजी महाराज ने लिखा है, थिंक गुड डू गुड एंड बी गुड। सोचते भी रहे अगर आपने कर्म नहीं किया तो कर्म कहाँ किया, एक थॉट से मुब्तला हो गए। सोचिए भी और करिए भी, चाहे 10 भली चीज़ें सोची उसमें से शुरू में 5 ही की, 6 ही की, और फिर आपकी आदत पड़ जाए स्वभाव, इसी को स्वभाव का बदलना कहते। एक साथ कोई भी नहीं कर पाता, और जो धीरे धीरे कन्फर्मेशन होता जाता है उतने ही है वो आदमी मजबूती से इस काम को करता रहता। और एक गुरु से बड़ा दुनिया में कोई हितैषी नहीं होता। एक वही शख्स रहता है कि जो सिवा अपने शिष्य के, चाहे वो किसी कास्ट का हो कितना ही हो, हित के अलावा और कोई चीज़ सोचता, और वक्त आखिर तक सोचता रहता। अक्सर लोग पूछते हैं गुरु करने की क्या ज़रूरत, केवल यही है ईश्वर अनलिमिटेड है, क्योंकि उसको हमने देखा नहीं। इसलिए जब तक मनुष्य का, हमारा हर एक का स्वभाव है जिस चीज़ को आँखों से देख लेते हैं तभी विश्वास होता। तो कोशिश यही करिए, किसी भी देहधारी आदमी का इसमें लोग कहते हैं सब ज़माना ख़राब है फलाना, ये सब बकवास की बातें हैं। कोई सोसाइटी जो भी समझ में आए, आगे की शुरुआत तो कहीं से करिए। अगर हम यही देखते रहे कि हम अपने लड़के को किस स्कूल में पढ़ाएं, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, तो सिवा ख़राब और अच्छाई के चक्कर में फंसे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जहाँ से आपने वो किया वहाँ स्टार्ट कर दीजिए, आगे सब उस मालिक पर छोड़ दीजिए। वो खुद इतना दयालु है, सब आगे का बंदोबस्त कर। और एक दिन आपको लक्ष्य तक पहुँचो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर बार राइडर लगाना चाहिए। वो कर्म करने चाहिए जिससे ईश्वर खुश हो या गुरु खुश हो, यही पुण्य कहलाता है, अच्छे कर्म कहलाते। जिससे गुरु खुश नहीं हो सिवा पाप के और कुछ नहीं। जब हमारे कर्म थे हमने किए थे तो और नहीं भोगेगा कौन, हम ही तो भोगेंगे, आगे का हम बना सकते हैं, हर शख्स अपना बना सकता है। इसी को गुरुदेव कहते थे, बेटे भिखारियों की तरह दया दया मत किया करो, हमसे आशीर्वाद मांगो जिसके तुम पात्र हो। हर शख्स पात्र है, और सच्चाई यही है कि जीवन भर बस एक कोशिश हम लोगों ने यही की कि हम कौन सा काम कर दें जिससे ताऊजी और बाऊजी को खुशी हो, और कोई काम ऐसा ना हो जिससे उन्हें दुख हो। बात ये हमारी और आपकी अकल सीमित है, उनके सरकमस्टेंसेस अलग है। रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी गृहस्थी थी, हम लोग पैसे भेजते थे। एक दिन दिवाली पे देखा साहब 150-200 रुपए गिरने, बच्चों ने पटाखे छोड़ दिए, बड़ा बुरा लगा। हमने भाऊजी से कहा कि हम लोग रात दिन मेहनत करके कुल हमारे पास 70 रुपए रहते हैं, बचे वो सब आपको दे देते, और ये लोग इस तरह से आपने बड़ी सहूलियत से कहा कि बेटे हम तो जो भी पैसा भेजते हो तुम्हारी माँ को दे देते हैं, हो सकता है उनने दे दिए होंगे, आइंदा देंगे। जिसका दुख आखिरी वक्त तक था, तो केवल एक कोशिश की कि कौन सा काम कर दें जिससे ये लोग खुश हो जाए, और कोई काम जाने अनजाने में ऐसा ना हो जिससे। मेंटेनेंस के लिए सिवा सत्संग के कोई दूसरा जरिया ही नहीं, चाहे वो पिछले जन्म की कमाई हो चाहे इस जन्म की कमाई हो, हर व्यक्ति को उसको मेंटेन करने के लिए सत्संग। जीवन भर ख्याल रखना पड़ेगा, वो अपनी डाइट का रखना पड़ेगा, खाने का और दूसरी सोहबत का। जैसा हमारा आहार होगा, जिस कमाई का होगा उसका असर हम पर जरूर पड़े। और हमारी सोहबत का असर हरेक को पड़ेगा। करने को बस केवल दो चीजें हैं, सेवा पहले लिमिटेड लोगों को करिए, फिर हर एक की करते रहिए। और दूसरे गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसके अलावा न कभी बाऊजी ने न ताऊजी ने कभी किसी काम के लिए नहीं, और वो शिकायतें सुनने को तैयार नहीं। थ्योरी अजब सी लगती है, उनने अपने लड़कों से ही नहीं मिलने दिया। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी कि नहीं बेटे इनसे मत मिला करो। उसी घर में जीवन भर रहे, देखा नहीं 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 इनको, और जब कब होती थी उन्हीं की डांट पड़ती थी। इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ये करनी पड़ती है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या लड़का भी हो, उससे दूर रहना पड़ता। अगर वो आपका हम ख्याल, किसी को हम ख्याल बना देना मामूली बात नहीं है। जो चीज़ हमारे साथ नहीं जानी है उसकी हम चिंता करते हैं, जो चीज़ हम सब के साथ जाती है उसकी कोई चिंता नहीं। किसी चीज़ को मना ही नहीं किया। भाई साहब से बाबूजी इनका भी दिन, उन्होंने भी कार खरीद ली, तुम भी कार खरीद लो। इन सब चीज़ों से कोई उसमें नहीं है। गुरु के तरफ कुल दो कर्तव्य होने चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए, सेवा। बाबूजी का ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया, फलाने शख्स को बराबर भेजते रहो। हमारी माली हालत ऐसी नहीं है जो कुछ, लेकिन हम उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अगर उसके बाद हमने अपनी अकल लगाई तो हम मनमते हैं, गुरु मते नहीं। गुरु मता तो वही शख्स है जो गुरु ने काम दे दिया, कहा, उसको बगैर अपनी अकल लगाए हुए करता रहा। उन्हीं लोगों की गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, सबके लिए हमदर्दी होती है उसमें। हाँ, जिम्मेदारी नहीं होती उसकी, वो आपका भला चाहता है। लेकिन जो आज्ञाकारी लोग होते हैं उनका गुरु भला करता, उनके लिए स्वयं वो प्रार्थना करता और उनके साथ साय की तरह रहता। क्योंकि उनके ख्याल की धार हर वक्त उस शख्स के उस पर बनी रहती। बचे हुए इन्हीं चीज़ों को जैसा जिसकी समझ में आया उसने वैसे बता दिया। जैसे जिसके हो, हर युग में ये विद्या थी, है और रहेगी। इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म पड़ा। सनातन धर्म का मतलब ही है जिसका ना आदि हो ना अंत हो। जब से सृष्टि की रचना पड़ी तब से लोगों ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि हम अपने पैदा करने वालों के उस सब साइंस डेवलप हुई, लेकिन न मौत पे किसी का वो है न किसी को पैदाइश पे वो, न है और आगे भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये केवल ईश्वर के हाथ में। तो हम लोगों को वो सोचना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इसी में लोगों ने सो लिया तो उन्होंने कहा अच्छा भाई नहा नहीं सकते, कोई हर्जा नहीं है, कपड़े बदल लो। वो आपको गाइड कर देता। उनका हम लोग को दो ही दो कपड़े रहते हैं, कैसे बदल सकते हैं। उनका अच्छा बेटे हम अपनी धोती वो दिए देते हैं, इसको बैठ के पूजा कर लिया करो, बस खाली पूजा में इस्तेमाल करो। आइंदा ख्याल करना जो कपड़े फट जाए और जिनको तुम बाहर पहनने में शर्म आए उनको रख लिया करो, है केवल पूजा में स्थान। नॉर्मल आदमी उनका इतने कपड़े ही नहीं है, पूजा कैसे करें बोले। उससे उसमें दोनों कपड़े देख लीजिए, एक आप जिससे दुनियादारी निभाती है उसमें और एक उसमें, दोनों में फर्क होता है। प्लेस में फर्क होता है, क्योंकि मेन चीज जो है वो मन होती है और उस मन पे वातावरण का असर होता है। अगर एक जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा हर व्यक्ति को। कितना होता है इसमें डिक्लेयर कर देते हैं और उसको ऑटोमेटिक डिक्लेयर नहीं करते, ताकि हो सकता है जो एक आध लोगों को उनको विश्वास हो वो उन पर चला जाए। ताऊ जी महाराज फौरन डिक्लेयर कर देते थे, बाऊजी महाराज साहब ने भी एक इजाज़, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिकली नहीं कहा। ताऊ जी महाराज साहब रीजन भी बता देते थे कि ये तुमसे वो हो गया था जिसको मैं बर्दाश्त नहीं, मैं कर भी जाता बुजुर्गों ने नहीं किया लिहाजा मैं निरस्त। और एक्चुअली यही अदब कहते हैं। ये इसलिए कम देते हैं कि आप किसी से मिले उन्हें भाई तुम क्या करते हो, गुरु की शगल उनका, वो सब अपनी पूजा कराने लगे। नहीं, इससे सहल रास्ता कोई नहीं है, इससे सहल रास्ता ही कोई नहीं है। भाई आप आधार भी मानते हैं, मान लीजिए आपने दुर्गा की पूजा की, हनुमान जी की, आपने तो उन्हें देखा नहीं, उनकी मूर्ति को डेड चीज को मान लेते हैं, ईश्वर को आपने देखा नहीं है, तो कोई आधार बनाया तो वो इमेजिनेशन है, सही हो सकता है नहीं सही हो सकता। केवल इसीलिए वर्ड करते हैं यानी हम दोनों जनों के गुरु ताऊ जी थे, लेकिन भाई साहब को शक्ल का ध्यान ही नहीं बता, उन्हें भी तुम प्रकाश का ध्यान करो। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा रहे तू हमारा बेटा है, वो तो श्यामलाल का बेटा है, उससे कहा अपने बाप से पूछे क्या करना है। तो वो हंस के टाल देते थे इन चीजों को। लेकिन फैक्ट यही है कि गुरु के इस स्थूल को सहारा लेके, इससे आसान तरीका ही नहीं है। गुरु के विचारों से अपने विचार मिल जाइए और उसके कारण तक पहुंच जाएंगे, इससे आसान रास्ता। सिक्सटी नाइन में हमको बताया नहीं बेटे, अब शब्द से जोड़ो इसको। तो उनका बगैर शक्ल के तौर का नहीं, शक्ल छोड़ने कौन कह रहा है, लेकिन असल चीज ये है। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि फिर सांस से जोड़िए, पहले जो विद्यमान से उच्चारण करते रहिए, फिर सांस से, ताकि जब तक ऑक्सीजन सप्लाई उस जगह रहे, आपके नाम से ईश्वर का नाम निकलता। इसी को मुसलमानों में शकल राब्ता कहते हैं। इसकी एहतियात के लिए मुसलमान फकीरों ने अपने फोटो नहीं खिंचवाए, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज करते थे। हमारे यहाँ शुरू से मूर्ति पूजा थी। किसी सेंट्स का, मुस्लिम सेंट्स का फोटो आपको नहीं मिलेगा, कभी किसी ने खींच लिया हो, वो उसने रिप्रिंट कराया और जगह नहीं मिलेगा। उसका रीजन ही ये था। लेकिन सबसे ज्यादा बाबूजी ने भी लिखा उनकी किताब में कि सबसे यकीनी जरिया शकल राब्ता ही से सहारा लेके शब्द से कर, कम टाइम लगता है और आसानी होती है। इसीलिए शुरू में दो लोगों से अपने मन का हाल नहीं कहते। सिवा गुरु के दूसरे से कहने ही नहीं चाहिए। अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब है सब आपका खाली हो। उसमें भी एहतियात लोगों ने यही की है कि साल में जब मिलो तो लिख के दे दो, और इसी को डायरी का मेंटेन करना करते हैं। और अगर वो परमार्थी है तो जीवन काल में सत्य हो, अगर नहीं सत्य होती तो ये समझिए मन की एक अवस्था थी जो कि इसी को बाबूजी महाराज कहते थे, बेटे बस ये कह सकते हो कि वजह चोर डाकू भूत देखते, उजर को वो देखा, उनका ख्याल बना हुआ है, ये भी अच्छा है। लेकिन ये मन की अवस्था है। आपने स्वयं देखा होगा उस डायरी को, बाबूजी की कितनी कीमत थी। ये जीते जीते वो कभी यही कहते रहे दूंगा किसी को,